नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के पत्थरकंडी में एक चुनावी रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर सभी घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाएगा।
ये भूमि हमारी है, ये घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहा है, हमारे गरीबों के धान के अंदर चावल के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है। हम नहीं चलने देंगे। घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी।
श्री शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम की बराक घाटी में घुसपैठियों को पनाह दी और कांग्रेस ने बराक घाटी की उपेक्षा की तथा उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में 72 से 73 सीटें जीतेगी। आज गुवाहाटी में श्री खड़गे ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी।
असम का बेटा जुबीन को न्याय नहीं मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत बनाने के बजाय 6 महीने के बाद बनाया। हमारी सरकार बनने के बाद हम 100 दिन में ये काम न्याय देकर रहेंगे और इस दोषियों को सजा दिला के हम रहेंगे।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अधीन मतदाताओं की पूरी सूची जारी कर दी है। 32 लाख से अधिक मतदाताओं को योग्य घोषित किया गया है, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है। सरकार ने कहा है कि देशभर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुधार्था शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुश्री शर्मा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी भी सुचारू रूप से जारी है और ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 96% तक हो गई है। उन्होंने कहा कि कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट पूर्व स्तरों के लगभग 70% तक बढ़ा दिया गया है। असम पुलिस ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर तलाशी ली। ये तलाशी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिका भोयान शर्मा द्वारा श्री खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद की गई। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री खेड़ा ने दावा किया था कि श्रीमती रिनिका भोयान के पास 3 पासपोर्ट हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह आज जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि में विविधता आवश्यक है। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर कल इसराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस संयंत्र असलुया स्थित साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया। इस घटनाक्रम से जवाबी कार्रवाई और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौते और तय समय सीमा से पहले होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर सहमत नहीं होता है तो अमरीका ईरान के ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतिस्पर्धा के लिए देशभर के फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।